யாவர ராமச்சந்திர ஜ மாறு மௌட்டவன் சீவாலே சீஜ கலியுகே तो गीता जी के नौवीं अध्याय के अंत के श्लोक पर आपको सुनाया था। आज पांचवें अध्याय के अंत के श्लोक पर कहा जाता है, जो 29 का श्लोक है। भोगतारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। सुरीदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं कि मुझ परमात्मा को यज्ञ और तपों का भोगता और सब लोगों का महान ईश्वर और सब भूतों का सूर्य जान करके के और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति से जो शांति मिलती है, वही शांति जिसको परम शांति कहते हैं, शास्त्र शांति कहते हैं। तो इसमें तीन बात कही कि मुझ परमात्मा को यज्ञ और तपों का भोगता जान करके और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है और सब लोगों का महेश्वर महान ईश्वर ईश्वरों का भी ईश्वर जान करके शांति को प्राप्त होता है और सब भूतों का सूर्य दे मुझको जान करके और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। तो ये तीन जो बात है, तीनों साधन प्राप्त करने से ही शांति मिलती है या तीनों में से किसी एक साधन को करने से शांति मिल जाती है, तो इसका ये उत्तर है। तीनों में से किसी एक साधन को कर लेने पर भी शांति मिल जाती है, फिर तीनों साधनों को करने से शांति मिल जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए ऐसा अनुभव कर लेना चाहिए कि भोगता रंग यज्ञ तपसाम ज्ञातवा मांग शांति मृत्यति। ये चतुर्थ जो चरण है, चौथा चरण, ये सप्री लगता है। सर्वलोक महेश्वरम ज्ञातवा मांग शांति मृत्यति। सूर्यगंग सर्वभूता नाम ज्ञातवा मांग शांति मिलती है। सब जग और तपों का भोगता मुझको जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त कर लेता है। सब लोगों का महान ईश्वर मुझको जान करके शांति को प्राप्त कर लेता है और सब भूतों का सूर्य मुझको जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त कर लेता है। अब ये समझना है कि यज्ञ और तपों का भोगता भगवान को जानना क्या है और उसको जान करके शांति कैसे मिलती है। कि संसार के बीच के मां कोई मनुष्य यज्ञ करता है या तप करता है तो उसका भोगता भगवान ही है। जैसे आकाशात पतितं सोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। आकाशात पतितं सोयं, आकाश से बरसा हुआ जो जल है वो जिस प्रकार से सागर को प्राप्त हो जाता है, आकाश से जल बरसता है पहाड़ों पर, पहाड़ों से नदियों में आता है, नदियों से समुद्र में चला जाता है, इसी प्रकार से सब देवों को जो मनुष्य नमस्कार करता है वो भगवान को उसका नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तो भगवान किस प्रकार से भोगता है कि जैसे हम लोग अग्नि के मां आहुति देते हैं तो वहां भगवान अग्नि रूप होकर के और उसकी आहुति का ग्रहण करते हैं। भगवान ही तो सब कुछ है, तो अग्नि भी भगवान का ही स्वरूप है। इस वास्ते अग्नि के स्वरूप में भगवान उसकी आहुति को ऐसा ग्रहण करते हैं। इसलिए बहुत प्रकार के यज्ञ गीता की चौथी अध्याय के वहां 24 के श्लोक से लेकर के 30 के श्लोक तक बतवाए। माने परमात्मा की प्राप्ति का जो भी साधन है उसकी यज्ञ संज्ञा ऐसो बतला दी गई। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं। तप भी यज्ञ है, योग भी ऐसो यज्ञ है, ज्ञान भी यज्ञ है। तो इस प्रकार से समझो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है उसे को यज्ञ का रूप भगवान ने दिया। इस प्रकार से थी जो प्रसिद्ध पांच महायज्ञ है, जैसे भूत यज्ञ यानी बलिविष्ट करना, पितृयज्ञ पितरों के लिए तर्पण करना और पिंड देना, और देवी के देवताओं के वास्ते अग्नि में होम करना, देवताओं की पूजा करना, ऋषि यज्ञ जो श्रुति स्मृति आदि जो ऋषियों ने जो ग्रंथ बनाए हैं उनका स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, ये ऋषि यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ अपने घर पर आए हुए अतिथि उनका एक बार सत्कार करना, ये सो मनुष्य यज्ञ। तो भगवान कहते हैं कि सब यज्ञों का भोगता मैं हूं। इस प्रकार से जो मनुष्य जानता है वो शांति को प्राप्त होता है। हम जो भोजन करते हैं और उसमें भी ऐसा भाव मान ले हुए कि हमारे भीतर में देशवान रूप से भगवान विराजमान है, और हम जो भोजन करते हैं वो एक प्रकार से अग्नि में मानो आहुति दे रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस प्रकार से थी हम एक प्रकार से भोजन करने के समय, ग्रास लेने के समय और ऐसा मंत्र बोल बोल भोजन करें तो वो एक प्रकार से समझो कि हम यज्ञ ही कर रहे हैं। हम जो भोजन कर रहे हैं उसकी भी यज्ञ संज्ञा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने शरीर को परमात्मा के समर्पण कर देते हैं तो ये चीज फिर परमात्मा की हो गई। जैसे गाय जो है सो किसी ब्राह्मण को हमने दान दे दी तो वह गाय तो ब्राह्मण की हो गई। ब्राह्मण की होने के बाद भी हम गाय को चारा चरावें या समझो कि अनाज खिलावें तो खिला सकते हैं। उस गाय के दूध से हमारा कोई संबंध नहीं, किंतु गाय को चारा चराना और अन्न खिलाना इसमें तो कोई दोष की बात है नहीं, तो महत्व की चीज है। तो ये शरीर को जब हम भगवान के समर्पण कर दे तो इसको जो अन्न खिलाना जो है वो कोई दोष की बात नहीं। जैसे गाय का जो दूध है वो हमारे काम का नहीं, यदि उस गाय का हम दूध पिए तो वो एक प्रकार से भोग हो जाता है कि उस पर हमारा हक नहीं है। इसी प्रकार से इस शरीर से हम विषय भोगों को भोगें तो वो हमारा हक नहीं। यदि इससे हम अपने भोग भोगें या सुख इससे लें, इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग होने से जो आराम मिलता है, भोग मिलता है। बोले भोजन करें और फिर उससे भोग नहीं लेना, तो भोजन करना भी तो भोग है। बोले नहीं, गाय को जब हम घास देते हैं, जल पिलाते हैं, तो उससे हमारे को कोई स्वाद तो नहीं आता। हम उस गाय की रक्षा के लिए, उसकी जीवनी के लिए ही हम उसको आपने घास खिलाते हैं। और वो जिसके प्रति हमने दान दिए उसको दूध देगी वो गाय। फिर शरीर रूपी जो गाय है, देह रूपी जो गाय है, यह भगवान के समर्पण कर दी गई। अब भगवान की सेवा करना ही भगवान को दूध देना है। और इस शरीर से समझो कि भोग भोगना ही दूध पीना है। तो भोजन करने के समय के बीच के मां हमारी जो दृष्टि यदि स्वाद की तरफ हो गए कि भी भोजन कैसा स्वादु है, तो ये एक प्रकार से थी आपने भोग भोगना है। और शरीर निर्वाह के लिए केवल अन्न और जल में, उसमें कोई दोष नहीं है। शारीरिक केवल कर्म है, कुरो नापनोति के लिए विषम। केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ये भगवान ने गीता के चौथी अध्याय के वहां 21वें श्लोक में यह बात कही। तो इसका भाव यह है कि भोगतारंग यज्ञ तपसाम, हम अतिथि यज्ञ कर रहे हैं। कोई घर के ऊपर मनुष्य आ गया तो उसको साक्षात भगवान समझ करके के और उसको भोजन करावे। भगवान ही उस अतिथि के रूप में हमारा भोजन पा रहे हैं, तो साक्षात भगवान अपने घर पर आ जावे और उनकी सेवा करने से जो हमारे को सुख होवे, शांति मिले, इसी प्रकार से अपने घर पर आए हुए व्यक्ति को साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके हम उसकी सेवा करें। और वो ही हमारा भाव हो रहे तो भगवान की सेवा करने से जो मिले वही हमको मिल रहा है, और नहीं मिलता है तो हमारा भगवत भाव उसमें नहीं है। बात को लक्ष्य में रखकर के हम रस्ते चले, हमारे को कहीं भी कोई गऊ मिल जावे तो यही समझे कि प्रभु आप यहाँ गऊ के रूप में विराजमान हो रहे हो, ऐसा समझ करके उनको हम घास पिलावें, जल पिलावें, सेवा करें। गाय भगवान समझ, ऐसे कुत्ते को भी हम रोटी देवे तो यही समझे कि हम कुत्ते के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। वृक्ष के माँ भी जल ढालें तो ऐसा भाव रखें कि स्वयं भगवान ही वृक्ष के रूप में जल है तो पी रहे हैं और हम उसको पिला रहे हैं। तो भगवान को जल पिलाने से जो शांति मिले, आनंद मिले, इसी प्रकार से शांति और आनंद उनको मिलना। यदि ऐसी बात नहीं है तो हमारा जो भाव है वो भगवत भाव, इसलिए यौन मात्र में भगवत भाव होना ही सबसे ऊंचे दर्जे है। बहुनांग जन्म नाम के ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्व स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सब वासुदेव ही है, इस प्रकार ज्ञानवान जो है मुझ परमात्मा को भरता है, यानी मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, वह समझो कि अति दुर्लभ महात्मा है। ये भगवान ने गीता चौथी अध्याय के 19वें श्लोक में यह बात कही। इस सिद्धांत के अनुसार सबको साक्षात नारायण का स्वरूप समझ कर और हम सबकी सेवा करें तो नारायण की सेवा है। सबका सत्कार करें तो नारायण का सत्कार है, सबकी पूजा करें तो नारायण किया है। इसकी पहचान यह है कि जब भगवान कहते हैं कि भोगतारंग यज्ञ तपसाम ज्ञात्वा मां शांति मिलती, मैं यज्ञ और तपों का भोगता हूँ, इस प्रकार से जानकर के मनुष्य को शांति मिलती है। यदि हमारे को शांति नहीं मिलती है तो ये समझना चाहिए कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ और उसका भोगता जो भगवान है, इस बात का मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी भावना दृढ़ नहीं है। यदि ऐसा दृढ़ विश्वास हो तो उसको शांति मिलनी चाहिए। ये इसी कसौटी है। तो सब में भगवत बुद्धि कर करके और सब की सेवा करने से मनुष्य का बहुत शीघ्र कल्याण हो जाता है। यह बात भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी कही कि यत प्रवृत्ति भूतानाम और ये न सर्विदम ततम स्व कर्मणात्म धैर्य चिदिन बिंदती मानव। जिस परमात्मा से यह संसार गुण हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज कर करके उनकी सेवा कर करके और परम सिद्धि को प्राप्त। तुलसीदास जी भी अपने कहते हैं हनुमान के प्रति सिंधा कांड
समदरसी मोही कहने सब है को शिव के प्रिय अनन्य गति सो
हे हनुमान। मुझको सब कोई समदर्शी कहते हैं किंतु मैं अपने को समदर्शी नहीं कहता, क्योंकि जो मेरा अनन्य जो भगत है वो मुझको प्यारा है। ये एक प्रकार से चाहे कोई मुझको समदर्शी न कहे किंतु अनन्य जो मेरा भगत है वो तो मुझको अतिशय प्यारा है, क्योंकि मैं से प्यारा हूँ जी मुझको से प्यारा अनन्य भगत रखने फिर कहते तो
अनन्य जाती ऐसी माती न तेरे मैं सेवक सतरा तेरे रूप राशि भगवंत सियावर।
वे मेरा अनन्य भक्त है जिनकी मति मन भी इस सहसंग के भी तरफ नहीं आसान चराचर जो है सो भगवान के सूप जाति है और मैं सबका सो भाव एक है। जो वहाँ बताया 18वीं अध्याय का 40वां श्लोक अर्जुबरा एक भाव मिलता है और ये जो बताया था भोगता रंग यज्ञ परमात्मा को जग और तपों का अवतार जान कर अगर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है तो शांति को प्राप्त होता है कह दो और समझो क्या है परम श्री को प्राप्त होता है कह दो। एक बात भाव यह है सब विजय माँ भगवत धर्म और सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है, सबकी पूजा ही भगवान की पूजा है, सबको नमस्कार ही भगवान को नमस्कार है। तो ये भाव होने सबके में नारायण जो सेवा करना मनुष्य का कल्याण दूसरी बात है कि सर्व लोग भगवान को सब लोगों का महान ईश्वर मानकर और मनुष्य को परम शांति जाती भगवान को महान ईश्वर मानकर शांति नहीं मिलती है। हम भगवान को महान ईश्वर माना ही नहीं तो शांति मिलनी चाहिए और महान ईश्वर मान लेने से महेश्वर मान परमेश्वर मान लेने उनके सारे विघ्नों का नाश होकर के परमेश्वर प्राप्त किया। उस परमेश्वर को ही एक प्रकार से महर्षि पतंजलि ने पुरुष योग पहले पाद 23 के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रणिधानात हुआ ईश्वर प्रणिधान से समाधि की हो जाए समाधि सिद्धि प्रणिधानात आगे भी आता है प्रणिधान से समाधि की हो जाती। यहाँ प्रकरण चल रहा है कि योग निरोध के निरोध का नाम योग है और निरोध क्या होता है वस्तुओं के निरोध होने पर जो है साक्षात खुद आत्मा हो जाता है। निरोध होने का उपाय बताया कि अभ्यास वैराग्य अधम तो निरोध हो अभ्यास जो है भगवान के नाम जब अभ्यास और जो वैराग है उससे क्यों निरोध है और भी कोई भी प्रकार कोई प्रकार से वैराग पूर्वक जो अभ्यास है उससे क्यों निरोध है। और दूसरो एक ऐसा उपाय जो है परिधानात्वा ईश्वर परिधान भी तो फिर ये जानने के उत्तर क्या चीज है तब ईश्वर को स्वरूप बतलायो कि कलेश कर्म विपाक आशीर अपरा पुरुष ऐसा जो पुरुष है सब ईश्वर है कैसा जो है कि माँ कलेश कर्म पाक और आश कलेश कर्म पाक ऐसे जो हित है अरे संसार में जो पुरुष है सब में श्रेष्ठ हुआ पुरुष में कहा पुरुषोत्तम यहाँ कहा पुरुष विशेष कह दो अरे पुरुषोत्तम कह दो। एक बात कलेश के लिए बताया कि तो कोई कलेश नहीं है क्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेश ये पांच कलेश बताए हैं। पांच कलेश क्या है एक तो अज्ञा माना ज्ञान अरे एक अस्मिता माने एक देहाभिमान अहंकार अरे एक अनुकूल में होने वाली द्वेष हो राग और एक प्रतिकूल में होने वाली द्वेष अरे मरने को भय ये पांच वस्तु कलेश माने दुख देने वाले हैं इसलिए इसका नाम कलेश रखा। तो ये ईश्वर में नहीं है और ईश्वर के वहाँ कर्म भी नहीं है। चार प्रकार कर्म है चारों ईश्वर में नहीं है एक तो पाप कर्म एक पुण्य कर्म और एक पुण्य और पाप मिले हुए पाप का नाम उन्होंने पुण्य कर्म कहा पुण्य का नाम शुल्क कर्म कहा तो न पाप कर्म माने कर्म पुण्य कर्म माने शुल्क कर्म और एक दोनों मिले हुए शुक्ल कर्म माने पुण्य और पाप और चौथा ये बताया अशुक्ल माने कर्म किया तो है कि मैं पुण्य पाप प्रकार से
ऐसा प्यार ही करूँ, ये बतलाए प्यार कैसे, पाप कर्म मेरे समझो कृत कर्म पुण्य कर्म और पुण्य पाप मिले हुए तो पाप और पुण्य मिले हुए बीसरी चौथा खा बोले चौथा वो माने अकर्म डूबे तो कर्म है वास्तव में वो अकर्म है जैसे बतलाए कर्म के वहाँ अकर्म देखना कर्मण्य कर्म है कर्मण्य कर्म या प्रसिद्ध कर्मी से कर्म जो कर्म में अकर्म देख रहा है अकर्म है अकर्म ये क्या है
नहं करतो भाव भी जैसे नीपते हतवापी से ईमान लुका नहंती मध्य तत्वा कर्म फला संगीत हो जाती है कर्मण्य तो नहीं सिंधु कर्म के वहाँ फल और आसक्ति को त्याग कर परमात्मा की धन जो ऐसा पूर्ण कर्म कर करके भी कुछ भी नहीं कर्म कर करके भी इस प्रकार चार प्रकार एक पाप कर्म एक कर्म और एक पाप कर्म और कर्म मिले हुए ये तो सब साधारण योग्य महात्मा के जो कर्म देख रहकर तो इस रूप में ये चारों चार कर्मों में कोई भी कर्मोत्तर ही कलेष्तर ही कर्मोत्तर ही और कर्मों का जो फल है फल क्या है जात आयु और भोग जात माने योनि आयु माने इतने वर्ष तक जीवेगा और भोग माने हर शोक अल्लाह दा तो ये तीन दिन कलेष कर्म इसी प्रकार पास यही है और पुरुषों में देश है तो ये लक्षण के बतला है आगे जा और भी उसको क्या कहता है सारी माँ जो ज्ञानी है उनमें ज्ञान जो है तो निरति है माने उसे बढ़कर उसमें ज्ञान नहीं है और वे सबका उपदेशा है और जो गुरुओं का गुरु है और काल करके विभाग नहीं किया जा सकता है ऐसा जो परमात्मा का रूप है उसका नाम प्रणव है तो उसके नाम का जो जप है